हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव तारा का पूरा ख्याल रख रहा था, हालांकि उसने अभी भी तारा को माफ नहीं किया था। तारा का ख्याल रखते हुए ध्रुव ने एक बार भी तारा से बात नहीं की थी। यहां तक कि कल से ध्रुव और तारा की शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं और तारा को अपनी शादी के बारे में भनक तक नहीं थी। अभी भी ध्रुव तारा को छोड़कर जा रहा था, लेकिन तारा को उसकी ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तारा ने अपनी साइड का पक्ष रख दिया था। उसने बता दिया था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, किस तरह दक्ष ने कॉल करके उसे अपने पास बुलाया और कृषा को शूट करने पर मजबूर किया था। ध्रुव सारा सच जान गया था जब उसने ये कहा कि वो तारा के बेगुनाह होने और दक्ष के फंसाए जाने के बारे में जानता है, तो तारा हैरान रह गई। वो जानना चाहती थी कि जब ध्रुव सब सच जानता है तो आखिर उसे किस बात की सजा दे रहा है। जैसे जैसे तारा सवाल पूछ रही थी, ध्रुव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो तारा के पास गया और उसने तारा का गला पकड़ लिया था। वो तारा की आंखों में देखते हुए जोर से चिल्लाकर बोला, अच्छा तुम नहीं जानती मैं तुम्हें किस बात की सजा दे रही हूँ? ये जानबूझकर अनजान बनकर मुझे और तकलीफ देना चाहती हो? तारा की आंखों में हैरानी थी। उसने ना में सिर हिला दिया था। वहीं ध्रुव के सर्द चेहरे पर अचानक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। तुम जानती थी ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या इमोशंस थे। मैं उस रात नशे में था, लेकिन तुम होश में थी और सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ था। तुमने मुझे नहीं रोका, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? धोखा देने के लिए मेरे करीब आई थी ना तुम? मिल गया सुकून मुझे तोड़कर। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो मुझे बर्बाद करने वालों को आसानी से छोड़ दूं। तुमने कृष के साथ जो किया उसके लिए सजा देने का अकेला हकदार मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, तारा मल्होत्रा, ध्रुव दांत पीसते हुए बोला और उसने तारा का गला छोड़ दिया था। ध्रुव का जवाब सुनकर तारा को झटका सा लगा। वो कुछ बोलने की हालत तक में नहीं थी। तारा ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसने कृषा पर गोली चलाकर उनका भरोसा ही नहीं खोया था, बल्कि उसकी सच्चाई सामने आने पर ध्रुव के दिल में उसके लिए जो प्यार था वो भी बेइंतहा नफरत में बदल चुका था। तारा कुछ बोल पाती उससे पहले ध्रुव वहां से चला गया था। तारा ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। वो खोई हुई हालत में थी। उसने खुद से बड़बड़ाकर कहा, क्या ये भी मुझसे प्यार करने लगा था? मैं सपने में भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकती। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम क्यों हम दोनों को तकलीफ दे रहे हो? ध्रुव बोलते हुए तारा की एक आंख से आंसू का कतरा बह गया था। तारा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और ध्रुव के पीछे जाने लगी। तारा उस तक पहुंच पाती उससे पहले ध्रुव वहां से निकल गया था। तारा को सेकंड एंट्रेंस से आगे जाने की इजाजत नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे वहीं पर रोक लिया था। तुमने मुझे मोहरा बनाकर जानबूझकर ये सब कुछ करवाया, तक्ष मल्होत्रा। जरूर तुम हम दोनों के रिश्ते के बारे में जान चुके थे। अगर मेरा रिश्ता और जिंदगी बर्बाद हुई है तो मैं तुम लोगों को भी छोड़ूंगी नहीं। जिस दिन मौका मिला मैं तुम्हें तुम्हारे धोखे की सजा जरूर दूंगी, तारा ने खुद को सख्त करके कहा और धीमी गति से चलते हुए वापस कमरे में जाने लगी। अब तक तारा को सिर्फ इसी बात का अफसोस था कि उसने कृषा को शूट किया था, जिस वजह से उसने ध्रुव और कृषा के साथ अपना रिश्ता खराब कर लिया। लेकिन जब उसे आज ध्रुव से इस बात का पता चला कि वो उससे प्यार करता था और उसकी अपनी आइडेंटिटी छुपाने व झूठ की वजह से ध्रुव उससे नफरत करने लगा है, तो तारा को और भी पछतावा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ योग और कृषा गाड़ी में थे। जब से उनके बीच बहस हुई थी उसके बाद से योग कृषा से ठीक से बात नहीं कर रहा था। ऊपर से अब तो कृषा भी योग से नाराज हो गई थी, क्योंकि योग उसके पीछे से सारा से बात कर रहा था। गाड़ी में आते ही कृषा ने योग की तरफ मुंह बनाया और फिर उससे नजरें फेरकर विंडो की तरफ चेहरा करके बैठ गई। उसकी इस हरकत से योग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे काबू करने के लिए उसने अपने होंठ दबा लिए थे। योग ने मन ही मन कहा, आज भी वही बच्चों जैसी हरकतें। तुम्हारे साथ रहते हुए कभी नहीं लगा हम अब इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे बेटे की शादी होने वाली है। सो तुम्हें लगता है मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी मेरी माफिया की दुनिया और मेरा मकसद है? इतने सालों में भी नहीं जान पाई मुझे? वेरी बैड केश। अब गलती की है तो सजा भी भुगतनी होगी। युग जानता था कि कृषा को किस तरह परेशान करना है। हॉस्पिटल से राणा मैंशन काफी दूर था। ऊपर से युग जानबूझकर गाड़ी को रास्ते में घुमा रहा था ताकि उन्हें जाने में और देर हो। लगभग एक घंटे ड्राइव करने के बाद भी वो घर नहीं पहुंचे थे। ऊपर से पूरे रास्ते युग बिल्कुल चुप था। इतनी देर कृषा के लिए चुप रह पाना किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं था। चलते हुए कृषा ने महसूस किया कि युग बार बार एक ही रास्ते से गाड़ी ले रहा था। उसने युग की तरफ घूर कर देखा और कहा, मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहने वाली हूँ। युग के फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने कृषा की बात का जवाब देने के बजाय गाड़ी की स्पीड फास्ट की और फिर से बैग लेकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगा। जिद के मामले में कृषा कभी युग को टक्कर नहीं दे सकती थी। ऊपर से अब तो वो उससे गुस्सा भी था। कृषा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर तुम क्यों मुझे पनिशमेंट दे रहे हो? हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, फिर भी तुम नहीं बदले हो। मेरी हर छोटी गलती पर मुझे सजा देते हो और फिर मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें सॉरी कहूं और अपनी गलती मानूं। क्या गलत कहा मैंने? मतलब तुम जानती हो कि तुम्हें किस बात की सजा मिल रही है? रियली क्रिश, जब तुमने ये सोच ही लिया है कि मेरे लिए तुम लोगों से ज्यादा जरूरी मेरी माफिया की दुनिया और मकसद है, तो क्यों ना हमेशा के लिए लंदन में सेटल हो जाता हूँ। तुम्हें तो मुंबई में रहना पसंद है, वो भी राणा मैंशन में। तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाला है नहीं। कैसा रहेगा जो मैं तुम सब लोगों को यहीं पर छोड़ दूं और अपने काम को पूरी तरह संभाल लूं, बिल्कुल पहले की तरह? हाँ, फिर शायद तुम्हारी बात गलत नहीं होगी। फिर चाहे तुम अपने वर्ड्स के लिए सॉरी ना भी कहो तो मुझे चलेगा, युग ने सख्त आवाज में कहा। कृषा जानती थी कि युग की कोई भी बात मजाक तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। उनकी शादी की शुरुआत में जब कृषा ने ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया था, तब युग ने उसे खुद से दूर अकेले मुंबई छोड़ दिया था। कृषा के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। वो जल्दी से बोली, नहीं युग, ऐसा मत करना। तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ। कृषा की बात खत्म होते ही युग ने जल्दी से ब्रेक लगाए और गाड़ी एक झटके से रुकी। युग ने सर्द निगाहों से कृषा की तरफ देखा। कृषा की नजरें खुद ब खुद नीचे हो गई थी। अभी भी गलत बोल रही हो कृष। व्हाट डू यू मीन मेरा नहीं पता? ऑफकोर्स आई कांट लिव विदाउट यू। तुम्हें तो एहसास भी नहीं है जब तुम्हें गोली लगी थी और हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तब मेरी क्या हालत थी। अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले को खत्म करके मैं खुद खत्म हो जाता। फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ और है? युग ने सर्द आवाज में कहा। जब इतना प्यार है तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्यों उस तारा की शादी मेरे ध्रुव के साथ करवा रहे हो? कृषा ने भारी आवाज में पूछा। तुम भी तो यही चाहती थी? युग भौहें उठाकर बोला।
क्योंकि तब मैं उसकी सच्चाई नहीं जानती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों उसका फेवर कर रहे हो। अब तक जिसने भी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुमने उसे बहुत बुरी मौत दी है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसकी जान लो, लेकिन उसे हमारी फैमिली में इन्वॉल्व मत करो। सच कहूँ तो पहली बार मुझे तुम्हारी और सारा की बात सही लग रही है कि मैं जल्दी से किसी को भी अपना बना लेती हूँ। कम से कम इस मामले में तुम लोग मुझसे बेहतर तो हो, कृषा ने मायूसी से कहा। युग ने कृषा के बालों को उसके कान के पीछे किया। उसने कृषा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार भरे लहजे में कहा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए तुम परफेक्ट हो कृष। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम्हें सब अपनी तरह साफ दिल के लगते हैं। और ट्रस्ट मी, इस बार मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे दिल ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तारा बुरी नहीं है। जल्द ही ये बात तुम्हें, ध्रुव और बाकी लोगों को समझ आ जाएगी। कृषा हैरानी से युग की तरफ देखने लगी। पहली बार युग ने खुद को धोखा देने वाले को माफ किया था। ना सिर्फ माफ किया था, बल्कि वो उसका पक्ष भी ले रहा था।